मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 20 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं सौरभ सुमन का जो सहरसा बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं आप सबको नियमित रूप से कुछ सूचनाएं दिया करता हूं। तो सूचनाएं ये होती हैं कि कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको कल उपलब्ध कराई जाएंगी और साथ ही आपको योजना के 2 आर्टिकल्स दिए जाएंगे, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, और कुरुक्षेत्र के भी आपको 2 आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। मुख्य परीक्षा का आप अभ्यास करते रहें, इसको ध्यान में रखते हुए एक वीकली क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। आज के मुख्य विषय में मैं आपसे आर्थिक मंदी और शेयर मार्केट इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और ये वे खबरें हैं जो मुझे आप कह लीजिए कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही है। दोस्तों एक खबर है, आपने न्यूज में भी ये सुनी होगी, सशस्त्र सीमा बल को लेकर हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनके जो स्थापना दिवस होती है उसी स्थापना दिवस पर शामिल हुए। और अब आप देखिए कि जो सशस्त्र सीमा बल है अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। देखिए हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें बहुत सारी फोर्सेज हैं। कभी कभी होता है कि किसी वजह से कोई फोर्स ज्यादा चर्चा में आ जाती है और चर्चा में आ जाने के कारण उनके प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। अभी जो सशस्त्र सीमा बल है वो खासकर चूंकि होम मिनिस्टर हमारे वहां गए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के कारण एक तरह से आप कह लीजिए कि ज्यादातर ये SSF के नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा चर्चित हो गया। उन्होंने सीमा सुरक्षा आपके सशस्त्र सीमा बल के जब वो प्रोग्राम में गए तो उन्होंने एक बात कही, और ये जो हमारा बल है आपको मालूम है कि ये नेपाल और भूटान की जो हमारी सीमा है वहां तैनात है और उस सीमा की रक्षा करता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका संबंध नेपाल और भूटान की हमारी सीमा से है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ये दोनों हमारे बहुत ही मित्र राष्ट्र हैं, नेपाल से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और भूटान से तो बहुत निकट के संबंध हैं भी, लेकिन उन्होंने जो बात कही वहां ध्यान रखना है कि इनकी सीमाओं से घुसपैठिए आते हैं वो हमारे लिए चिंता का कारण है। यानी कि देखिए कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जब बात कर रहे होते हैं तो आपको बहुत संभल कर बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों मित्र राष्ट्र हैं हमारे, तो हमें इस तरह से बात करनी होगी कि उन्हें कि हमारी किसी बात से ठेस न पहुंचे और हमारे प्रति कोई आशंका भी उनके मन में न आए। नेपाल और भूटान से लगी हुई देखिए हमारी लगभग 1750 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसकी जो निगरानी है करने का काम SSF पर है, और पिछले एक साल में इस सीमा से 380 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित सामग्री पकड़ी गई है और इसमें से 166 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं शामिल हैं। अब देखेंगे उधर से थोड़ा सा और आप नीचे की तरफ उतर जाएंगे तो फिर आपको म्यांमार मिल जाता है। म्यांमार में तो थोड़ा सा जंगली एरिया भी है, पहाड़ी एरिया है, वन एरिया है, वहां से लोग घुसते हैं और इसके बाद वहां से घुस करके कुछ कामों को अंजाम देकर के फिर ये नेपाल भूटान की तरफ चले जाते हैं। बकायदे जो नेशनल सिक्योरिटी है आपके मेन एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन भी मेंस में काफी पूछे जाते हैं थर्ड पेपर में, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। एक बात जो मैं यहां और कहना चाहूंगा कि अगर मैं एक प्रश्न करता हूं कि ये जो हमारा जो सशस्त्र सीमा बल है ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है या इसका नियंत्रण करने वाला कौन सा मंत्रालय है, तो देखिए सामान्य रूप से दिमाग में आते हैं कि डिफेंस, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो मंत्रालय है वह है होम अफेयर्स, यानी कि हमारा गृह मंत्रालय है। और अब आप इसे जोड़ दीजिए कि मैंने क्या कहा कि हमारे कौन से मंत्री अभी गए थे, गृह मंत्री, तो सीधी सी बात है कि यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका जो गठन किया गया था 1963 में किया गया था, भारत और चीन में जो 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद ऐसा महसूस किया गया कि इस सीमा के लिए एक विशेष बल का गठन किया जाए और फिर ये SSF अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों अब है दूसरी खबर, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगाया गया है। सीधे तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिका की बात है और महाभियोग एक बहुत बड़ी घटना होती है, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी चर्चा मुझे इसके बारे में कर लेनी चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आप सबको एक सलाह देना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहां भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रावधान है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपको चाहिए कि वो महाभियोग वाला चैप्टर आप पढ़ लें और फिर कंपेयर करें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और भारत के जो राष्ट्रपति हैं, महाभियोग में कहां उन दोनों में फर्क है या कहां कहां बिल्कुल समान है। वहां राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं, हमारे यहां सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री को तो महाभियोग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा में बहुमत जैसे ही खोते हैं वैसे ही वो अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की स्थिति है, और भी हमारी जो दूसरे जैसे जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन सबको, हाई कोर्ट, इनको, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जस्टिस हैं उनको भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो यहां खासकर जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि महाभियोग वाले लेक्चर को वो सुन लें। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। वहां भी दो सदन हैं, जो हमारे यहाँ लोकसभा है वहां प्रतिनिधि सभा है, वहां से डायरेक्ट चुन करके आते हैं। हमारे यहाँ जो राज्यसभा है उनके यहाँ वो सीनेट है, यानी कि वो अपर हाउस है, ठीक है। तो वहां जरूरी नहीं है कि जो राष्ट्रपति बना है उसका निम्न सदन में बहुमत हो, जैसे कि भारत में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां राष्ट्रपति का सीधे चुनाव होता है, इसलिए उनको राष्ट्रपति भी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी जो प्रतिनिधि सभा थी उसने महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये अपर हाउस में जाएगा, यानी कि सीनेट में जाएगा। वहां सीनेट के 100 सदस्य होते हैं, 50 राज्य हैं, हर राज्य अपने दो दो प्रतिनिधि भेजता है, और इस तरह से सीनेट में 100 सदस्य हैं। हमारे यहां राज्यसभा का गठन इस तरह से नहीं होता, आप देखिए कि हालांकि नाम इसका राज्यसभा है, लेकिन राज्यसभा में जो राज्य अपने अपने प्रतिनिधि भेजते हैं उनकी संख्या अलग अलग है। छोटे राज्य कम सदस्य भेजते हैं, बड़े राज्य अधिक सदस्य भेजते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, हर राज्य दो सदस्य भेजता है, चाहे उसका आकार, उसकी जनसंख्या कितनी भी हो, तो 100 सदस्य हैं। अब ये वहां जाएगा, वहां ट्रायल होगा और वहां फिर मतदान होगा, लेकिन ये पूरी तरह से लग रहा है कि वहां ये महाभियोग का प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि सीनेट में दो पार्टियां हैं मेन, जो हमारे ट्रंप साहब हैं ये बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी के हैं, तो इनके पास 100 सीटों में 53 सीट्स हैं, बहुमत है, और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके पास 47 है। तो वहां दल बदलू इस तरह से होता नहीं है, तो 47 ही मिल पाएंगे महाभियोग के पक्ष में। लेकिन इसी से बात नहीं बनेगी, महाभियोग के प्रस्ताव को पारित होने के लिए 2/3 चाहिए, यानी कि 67 चाहिए, और इनके पास है 47, तो 20 ये कहां से लाएंगे, यानी कि सीनेट में ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये गिर जाएगा। इससे पहले जो 3 राष्ट्रपति थे उनके ऊपर महाभियोग के प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें एंड्रू जॉनसन थे, 1868 में उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया, लेकिन वो सीनेट में गिर गया। इसके बाद निक्सन के ऊपर लगाया गया, तो उन्होंने महाभियोग के पहले ही त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद 1998 में जो बिल क्लिंटन थे उनके ऊपर लगाया गया, तो वो भी सीनेट में पारित नहीं हो पाया। तो इस तरीके से लग रहा है कि जो ट्रंप के ऊपर जो महाभियोग लगाया गया है वह सीनेट में पारित नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी इस तरह के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्री में। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिसे अखबारों में जगह नहीं मिली है, लेकिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहे प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। एक वनस्पति है जिसका नाम है लुडविगिया पेरुविया, इसका दूसरा नाम है प्रिमरोज विलो, नाम आप दिमाग में रख लीजिएगा, लुडविगिया पेरुविया, इसे आप नोट भी कर लीजिए। जल में उत्पन्न होने वाला खरपतवार है जिसे आप वीड्स कहते हैं, और खासकर ये जो वीड्स, अभी एक रिसर्च आई है उसमें ये बात कही गई है कि असम की जो धनसिरी नदी है और जो कोपिली नदी है, धनसिरी नदी और कोपिली नदी ये दोनों असम के हैं, और असम के खासकर कार्बी, अंगलोंग और नागांव जिले, वहां की नदियों में ये जो वीड से खरपतवार है वो बुरी तरह से फैल गया है, और उसके कारण जो नदी की जो जल विविधता है, वहां जो रहने वाले जीव जंतु हैं, वहां की जो वनस्पतियां हैं, वो बुरी तरह से नष्ट हो रही है। उसका कारण यह है कि इस वनस्पति के कारण, लुडविगिया पेरुविया के कारण, जो प्राकृतिक जलमार्ग हैं वो अवरोध हो गए हैं, बाधित हो गए हैं। तलछट जो है उसमें बहुत ज्यादा जमाव होने लगा है और साथ ही साथ ये जो वनस्पति है ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा सोख रही है, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा ये सोख लेती है, दूसरी वनस्पतियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, साथ ही साथ जो मछलियां और दूसरे जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाते, तो वो मर रहे हैं और उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। देखिए, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और बकायदे पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से मित्रों ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, ये आपको मालूम होने चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, उसके लिए समय बहुत कम बचा है लेकिन फिर भी इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, और वो मुख्य विषय मित्रों की आर्थिक मंदी और शेयर मार्केट। देखिए, हमारे जो पूर्व आर्थिक सलाहकार रहे हैं अरविंद सुब्रमण्यम जी, उनका एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो जब अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान में गए थे जिसे आप IIM कहते हैं, तो उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो भारतीय शेयर मार्केट है वो लगातार बढ़ रहा है लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। मतलब शेयर मार्केट बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है, तो ये कैसे हो रहा है, ये अजीब बात क्यों हो रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रही है। देखिए, जो बात कही गई है, चूंकि आगे और पीछे की क्या बात उन्होंने कही थी वो हम लोगों के सामने नहीं है, लेकिन उस स्टेटमेंट को लेकर के मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, और खासकर मैं अपने क्लास स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने शेयर मार्केट के बारे में आप सबको बहुत विस्तार के साथ बताया था। सामान्यतः उन्होंने ये बात इस बात को ध्यान में रखकर के कही कि शेयर मार्केट को हम एक तरह का बैरोमीटर मानते हैं, अर्थव्यवस्था की सेहत को बताने वाला थर्मामीटर आप कह लीजिए। अगर शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रति हम बहुत संभावनाओं से भरे हुए हैं, हमें लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर होगी, और अगर शेयर मार्केट नीचे जा रहा है मतलब कि हमें आशंकाएं हैं। लेकिन यहां हम उल्टा देख रहे हैं, एक तरफ हम पढ़ते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है और जा ही रहा है, और दूसरी तरफ लगातार की अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको यहां शेयर मार्केट की जो रियल सच्चाई है वो थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि देखिए, जिसे हम निफ्टी कहते हैं, नेशनल 50, तो जो जिसे हम शेयर मार्केट का इंडेक्स कह रहे हैं उसमें बेसिकली 50 कंपनीज के रेट्स शामिल होते हैं, केवल 50 कंपनी, और ये जो 50 कंपनी है अलग अलग क्षेत्रों की, उन्हें बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है 50। इस 50 में से भी 10 कंपनियां ऐसी हैं जो सबसे बड़ा हिस्सा कवर करती हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, रिलायंस है, HDFC है, TCS टाटा कंसल्टेंसी है, इन्फोसिस है, ICICI है। अब ये देखिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो हो क्या रहा है कि अभी कि इन 50 इंडेक्स में से जो 10 बड़ी कंपनियां हैं जो इसके सबसे ज्यादा हिस्से को कवर करती हैं, इनके शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और इसमें से जो 40 बाकी शेयर हैं जिनका परसेंटेज इस इंडेक्स में थोड़ा कम है, या यू कह लीजिए कि इनका रोल थोड़ा सा कम है, कर तो ये भी अच्छा रहे हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमारे यहां इतनी सारी कंपनियां हैं। और दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि इनको छोड़ करके जो बाकी कंपनियां हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, सभी की नहीं लेकिन ज्यादातर कंपनियों की बहुत बुरी हालत है। अगर कोई 100 रुपए का शेयर था तो आप समझिए कि 70-80% उनके रेट डाउन हो गए हैं, अब वो 20-30 रुपए के रह गए हैं। इसका मतलब यह हो कि अगर हम निफ्टी को ही सब कुछ मान लेते हैं तब तो ये अचंभे की बात है, लेकिन अगर हम टोटल शेयर मार्केट को देखें जो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो सही मायने में शेयर मार्केट बुरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है, नीचे गिरता चला जा रहा है। और जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने शेयर खरीद करके रखे हुए हैं, उनके शेयर्स की वैल्यू टोटल, क्योंकि उन्होंने कई कंपनियों के शेयर खरीद करके रखे हुए हैं, उसमें से खराब शेयर कंपनियों के शेयर भी हैं, उनसे जाकर के पूछे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके पोर्टफोलियो की कीमत बढ़ी हो। अदरवाइज ज्यादातर जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके पोर्टफोलियो की कीमतें 30-40% तक, यहां तक कि आधी कीमतें रह गई हैं। तो ये इसकी सच्चाई है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी मुझे देनी चाहिए। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: साजिद हुसैन, कवलजीत कौर, उदय प्रताप यादव लखनऊ से, हरमिंदर सिंह और निखिल राज पाठक साहबगंज बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब यहां डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, लेकिन शुभकामनाओं के साथ 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।